नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। वे आज अजमेर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। कांग्रेस की जयपुर में बड़ी रैली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 प्रमुख षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में लगातार तेजी आ रही है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये चुनाव केवल सरकार गठन का चुनाव नहीं बल्कि ये विकसित भारत का चुनाव है। श्री मोदी आज सहारनपुर में पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि इरादा सही हो तो परिणाम भी सही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है और हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचें और इसके लिए हमने 10 वर्षों तक काम किया है। यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है।
हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन, 100% योजना लागू हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चहुंमुखी विकास के लिए काम किया है जिससे प्रत्येक नागरिक का जीवन आसान हुआ है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों के विकास के लिए लगातार काम किया। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अभी तक आप लोगों ने जो कुछ देखा है वो मात्र एक ट्रेलर है। विकसित भारत के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अजमेर में पुष्कर से भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में यह रैली आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए श्री मोदी की राजस्थान में यह तीसरी जनसभा है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने घोषणापत्र न्यायपत्र के संबंध में आज जयपुर में एक बड़ी जनसभा का आयोजन कर रही है। रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस जनसभा में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शाम को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। केरल में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोझिकोड जाएंगे। श्री नड्डा शाम को अरिईदा तूपलम और मुथाकुलम के बीच एक रोड शो का भी आयोजन करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए आज 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से रमाकांत खलप और दक्षिणी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और ग्वालियर से प्रवीण पाठक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश के सबसे छोटे लोकसभा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस केंद्र शासित प्रदेश में एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक रिपोर्ट।
लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में आम चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्तमान सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मोहम्मद फैसल, पूर्व सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमदुल्लाह सईद, भाजपा समर्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के टीपी यूसुफ और निर्दलीय के कोया लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में हैं। 10 द्वीपों में 55 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार मतदान करने वाले लगभग 2000 युवा मतदाताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। होगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तेलंगाना सीमा के पास छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में घने जंगलों में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में 3 नक्सली मारे गए। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार यह मुठभेड़ तेलंगाना के मुलुगी जिले की अंतर्राज्यीय सीमा के पास पुजारी कांकेर जंगल में हुई। गुप्त सूचना मिलने के बाद तेलंगाना के नक्सलरोधी बल ग्रे हाउंड्स के एक दल ने जंगल इलाके में नक्सलियों को घेर लिया। ग्रे हाउंड्स पुलिस ने नक्सलियों से एक AK-47, एक LMG और एक 12 बोर की गन बरामद की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल सेना ने एक संयुक्त अभियान में बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता के अनुसार उरी में नियंत्रण रेखा के निकट आतंकवादी घुसपैठ की योजना के संबंध में कई खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी। प्रवक्ता ने बताया कि कल तड़के भारतीय सेना ने आतंकवादियों के एक गुट को नियंत्रण रेखा की ओर से बढ़ते देखा। आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। जब यह अभियान चल था उसी समय पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों से भी रुक रुक कर गोलीबारी की गई। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 घुसपैठिए ढेर हो गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया जिसमें 2 AK-47 राइफलें, 3 मैगजीन, 4 ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे। NIA ने आज एक वक्तव्य में कहा कि इन दोनों अपराधियों को राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भीड़भाड़ वाले इलाके से गिरफ्तार किया गया। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों के हमले के कारण NIA दल के एक सदस्य को इस घटना में मामूली चोटें आईं और उनके सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचा। अनियंत्रित भीड़ ने NIA के दल और इसके सुरक्षाकर्मियों को भूपति नगर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। NIA ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बलई चरण मैती और मनोव्रत जना के रूप में की गई है। दोनों आरोपी आतंक फैलाने के लिए बम बनाने और विस्फोट करने के षड्यंत्र में गंभीर रूप से शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि वो विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के रायगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज चुनावी अभियान में उन्होंने कहा कि भाजपा ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुकांत मजुमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो पश्चिम बंगाल एक दिन अफगानिस्तान बन जाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने NIA पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित कथित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हिरासत की अवधि बढ़ा दी। इस मामले के सह आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश हुए। इस मामले में संजय सिंह को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आबकारी नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हैदराबाद में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 166 रन का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट और 11 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 12 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि एडन मार्कराम ने 36 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व अरन जाल्वेस्की कर रहे हैं। 2013 के बाद से दोनों टीमों के बीच अब तक 43 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 28 मैच जीते हैं, जबकि भारत को सिर्फ 8 में जीत मिली है, 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। ये श्रृंखला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरिस ओलंपिक में दोनों देश एक ही पूल में हैं। अस्ताना में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में कल भारत की अनुपमा उपाध्याय और ईशा रानी बरुआ महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गईं। अनुपमा ने सेमीफाइनल में जापान की सोरोना याशिकावा को हराया, जबकि ईशा रानी ने हांगकांग की लो सिन यान हैपी को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में तरुण मानीपल्ली भी फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला 8वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के सुंग जू वेन से होगा। मिक्स डबल्स के फाइनल में भारत के संजय श्रीवत्स धनराज और मनीषा की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की ओंग तियन सी और लिम च्यू सियन की जोड़ी से होगा। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ पार्टी नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और वर्षों से पार्टी के निर्माण में उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और बलिदान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को एनडीए का अभिन्न हिस्सा बनने पर गर्व है और वो अपने सहयोगी दलों की भागीदारी को महत्व देती है। इस बीच श्री अमित शाह ने भाजपा को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। श्री नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रव्यापी विस्तार के लिए वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान भी जताया। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि इसराइलियों को निशाना बनाने और अमरीकी संपत्तियों पर हमला करने की ईरान की संभावित तैयारी के मद्देनजर अमरीका में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इसराइली हमले के जवाब में ये हमले किए जा सकते हैं। इस हमले में ईरान का एक शीर्ष कमांडर मारा गया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर में हुए हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स का एक शीर्ष कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जहेदी मारा गया था। मौसम विभाग ने आज और कल देश के कई राज्यों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी और तेलंगाना लू से प्रभावित होंगे। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और गोवा में भी कल उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। वहीं केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी में भी मंगलवार तक उमस भरी गर्मी जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड और ओडिशा में आज बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। यही स्थिति असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में अगले 6 दिनों तक बनी रह सकती है। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 6 दिनों तक हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। लक्षद्वीप और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। बैंक के गवर्नर ने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के डिजिटल लेनदेन के लिए किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। वे आज अजमेर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। कांग्रेस की जयपुर में बड़ी रैली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 प्रमुख षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।